समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
वंदे मातरम्, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम्, वंदे मातरम्। देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये एक ऐसा गीत है जिसने कई पीढ़ियों को एकजुट होने, आगे बढ़ने और राष्ट्र की भावना का जश्न मनाने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि यदि देशभक्ति शब्द से परे एक भावना है तो वंदे मातरम गीत उस भावना को मूर्त रूप देता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ये गीत मातृभूमि को माँ के रूप में पूजते हुए उसकी स्तुति करता है।
Yes, friends, India's national song, Vande Mataram, it translates to Mother, I bow to thee. This composition, an enduring anthem, has inspired countless generations of freedom fighters and nation builders, standing as a lasting emblem of India's national identity and collective spirit. Composed by Bankim Chandra Chatterjee, Vande Mataram was first published in the literary journal Banga Darshan on this day, that is 7th November 1875.
इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, वी हैव मच मोर टू शेयर विद यू ऑल। वी बिगिन दिस एडिशन ऑफ आज सवेरे विद सम न्यूज हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the year-long commemoration of 150 years of the national song, Vande Mataram, in New Delhi today. He will also release a commemorative stamp and coin on the occasion. In a social media post, Prime Minister Modi said, the day marks a momentous occasion for every Indian and described Vande Mataram as a stirring call that has inspired generations and kindled an enduring spirit of patriotism across the country. The celebrations will feature mass singing of the full version of Vande Mataram across public places with enthusiastic participation from people of all sections of society. Here's what Prime Minister Modi had said about the significance of Vande Mataram in his Mann Ki Baat program.
Vande Mataram. Is ek shabd mein kitne hi bhav hai, kitni urjaye hain. Sahaj bhav mein ye hame maa Bharati ke vatsalya ka anubhav karata hai. Yahi hame maa Bharati ki santano ke roop mein apne daitvon ka bodh karata hai. Agar kathinai ka samay hota hai, to Vande Mataram ka udghosh 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है।
बिहार चुनाव में पहले दौर का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। बिहार विधानसभा के लिए पहले दौर में रिकॉर्ड 64.66% वोट डाले गए। 1314 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है। इस दौर में चुनौती पेश कर रहे प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 16 मंत्री तथा राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवम्बर को होगा। दोनों चरणों की मतगणना 14 नवम्बर को की जाएगी।
The election campaigning for the second and final phase of the Bihar Assembly elections has gained further momentum. Along with senior leaders of the NDA and the Mahagathbandhan, leaders of other parties have also put their full strength into campaigning. In the districts of Simanchal, Magad, Shahabad and Champaran regions, star campaigners and senior leaders of various parties are conducting intensive election campaigns. In the second and final phase of the assembly elections, voting will be held on 11th of November in 122 assembly constituencies across 20 districts, while the counting of votes will take place on November 14th.
भारत और लग्जमबर्ग ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में एक बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लग्जमबर्ग ग्रैंड डची के राजदूत क्रिश्चियन बीवियर ने यूरोपीय बाजारों में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को बढ़ावा देने के अवसरों पर विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि बैठक में साइबर सुरक्षा, क्वांटम प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नवाचार संचालित क्षेत्रों में संयुक्त पहलू को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया। डॉक्टर सिंह ने विज्ञान और नवाचार में एक प्रमुख अन्वेषक के रूप में देश के उभरने पर बल दिया। भारत अब दुनिया में वैज्ञानिक प्रकाशनों और स्टार्टअप गतिविधियों में शीर्ष 3 देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को अंतरिक्ष निर्माण और अनुसंधान के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया है। भारत और लग्जमबर्ग के बीच सक्रिय भागीदारी पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि लग्जमबर्ग के 2 उपग्रहों को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है।
Now some sports news. A nationwide celebration will be marked today to celebrate 100 glorious years of Indian hockey. We have more from our sports desk.
More than 1,400 matches will take place across 550 districts as part of the centenary celebrations. The main event will take place at the Major Dhyanchand National Stadium in New Delhi from 8:30 a.m., featuring a series of special events that capture the essence of Indian hockey's glorious journey. A 30-minute exhibition match featuring the Union Minister's 11 and Hockey India's mixed 11 men and women will highlight gender parity, teamwork and inclusivity with elite players from both the men's and women's national teams participating. This will be followed by the felicitation of hockey legends recognizing their contribution to the sport. An official commemorative volume, 100 Years of Indian Hockey, will also be released as a tribute to generations of players who have shaped India's hockey legacy. A large-scale photo exhibition will also take place at the stadium to take visitors through a visual journey of 100 glorious years of Indian hockey. India holds the status of world's most successful hockey nation with 8 Olympic gold medals and 13 Olympic podium finishes. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ हैं सुभद्रा।
Thank you, Akarshita. Starting with news from Chennai, the vision document of the Game Developer Association of India has estimated the creation of 2 million jobs in the sector. The document was released in the 17th convention in Chennai. The document said that the aim is to generate $10 billion in annual gaming content exports and $100 billion in value creation by 2035. The document outlines several recommendations to boost India's share of the $200 billion global gaming economy, including promoting the creation of homegrown game titles with global appeal, developing platforms to help Indian studios secure international public deals, co-productions and festival showcases. The state government is finalizing a policy to promote the animation and gaming sector, which aims to support skilling initiatives and offer financial incentives. Addressing the Game Developer Conference in Chennai, State Information Technology Digital Services Minister Palanivel Thyagarajan said that the state's animation, visual effects, gaming, comics, extended reality policy will rest on our 4 pillars, which is education, skilling, infrastructure development and ease of doing business and financial incentives. He said that the policy aims to integrate modules on game design, game programming, 2D and 3D animation, extended reality at both school and college levels. And Akarshita, you are going to Delhi now.
Ji, aur ab khabrein Delhi se. दिल्ली के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कल ईसापुर गांव स्थित कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने बावाना विधानसभा क्षेत्र में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन भी किया। श्री सिंह ने कहा कि ये केंद्र नागरिकों को आधार संबंधी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कल राजौरी गार्डन क्षेत्र में नई सीवर लाइनों, वाटर लाइन्स, बैकलाइन, नई सड़क और बाउंड्री वॉल जैसे लगभग 10 करोड़ रुपए लागत के कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्मोक गन्स गाड़ी को भी रवाना किया। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद कल तालक टोरा स्टेडियम में आयोजित गीता युवा शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री सूद ने कहा कि ये आयोजन गीता के माध्यम से युवाओं में आध्यात्मिकता, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा के मूल्यों को सुदृढ़ करने का एक उत्कृष्ट प्रयास है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कल नगर निगम अधिकारियों के साथ शहर के अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने अधिकारियों को अपशिष्ट कचरे को अलग करने और स्वच्छता तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक मशीनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के निर्देश दिए। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश भर में परामर्श सत्र आयोजित किए हैं। आयोग ने इन सत्रों में महिलाओं से प्राप्त मुद्दों के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को भेजी हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि इन परामर्श सत्रों में आयोग को महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों सहित अन्य अपराधों पर रोक लगाने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कल राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। श्री सूद ने बताया कि बैठक के दौरान वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और उनसे होने वाले उत्सर्जन को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शहरवासियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वायु सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कल दिल्ली सचिवालय में जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के साथ मुनाक नहर से संबंधित कार्यों पर बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्वच्छ और सुव्यवस्थित जल संसाधनों को सुनिश्चित करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 में वाम एकता ने सभी पदों पर जीत दर्ज की है। वाम एकता की उम्मीदवार अदिति मिश्रा ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, वहीं के गोपिका ने उपाध्यक्ष पद अपने नाम किया। इसके अलावा महासचिव पद पर सुनील यादव और संयुक्त सचिव के पद पर दानिश अली विजयी रहे।
Going over to Hyderabad now, the Telangana state government has directed for mass singing of the authorized version of the national song Vande Mataram in all government offices and educational institutions later today to commemorate the 150th anniversary of writing of Vande Mataram. A government order has been issued in the name of State Chief Secretary K. Ramakrishna Rao, issuing instructions to the district collectors yesterday. The Chief Secretary directed all district collectors to organize mass singing of Vande Mataram at 10 a.m. in the collectorates and all government offices. District collectors have also been directed to ensure that all educational institutions conduct similar mass singing programs at the same time. Over to you now for next one, please.
जी, और अब खबरें मुंबई से। भारतीय जनता पार्टी आज राज्य भर में 15 स्थानों पर भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का एक विशेष सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित करेगी। इनमें नागपुर, अकोला, ठाणे, रायगढ़, पुणे, अहिल्यानगर, कराड़, जलगांव, धुले, छत्रपति संभाजीनगर के साथ साथ मुंबई में कोलाबा, मानखुर्द, अंधेरी, मलाड, सायन शामिल है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चौहान ने कहा कि वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित और पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया, आज भी हम सभी के दिलों में देशभक्ति की लौ चलाता है। वहीं महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को आगामी नगर निगम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता से छूट के प्रस्तावों की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को बड़े और विश्वस्तरीय बैंकों की आवश्यकता है। कल मुंबई में 12वें SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि विलयन केवल एक रास्ता है बल्कि एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र और माहौल की आवश्यकता है जिसमें ज्यादा बैंक काम कर सके और आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में रिजर्व बैंक के साथ साथ बैंकों से भी बातचीत कर रही है। निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सर्च इंजन प्रदाताओं से धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत तंत्र लागू करने का आग्रह किया है। सेबी ने प्लेटफॉर्म से प्रतिभूति बाजार क्षेत्र में अनिवार्य विज्ञापन दाता सत्यापन की दिशा में प्रयासों को तुरंत प्राथमिकता देने और तेज करने का आह्वान किया है ताकि केवल सेबी पंजीकृत संस्थाएं ही निवेश उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन कर सकें।
Well, I'm going to Bengaluru now. The member of Niti Aayog, Dr. Vinod K. Paul, inaugurated the national workshop on reuse of treated wastewater in India in Bengaluru yesterday. Speaking on this occasion, Dr. Paul noted that India's per capita water availability has fallen below 1,400 cubic meters. To make up for the shortage, he felt an urgent need to achieve a 50% reuse of water by 2030 and 100% reuse of wastewater by 2045, saying that only 11 states in the country have a wastewater reuse policy. He felt a need to make treated wastewater to reuse a uniform exercise across the country. The workshop was organized by Niti Aayog in collaboration with Government of Karnataka and Bangalore Water Supply and Sewerage Board, with delegates participating from 18 states along with sector experts, researchers and policymakers. We have another news from Bengaluru. The Bengaluru Solid Waste Management Limited Chief Executive Officer Kare Gowda has informed that the Bidadi Waste to Energy plant receives 600 tons of refuse-derived fuel and segregated dry waste, which is converted into 11.50 megawatts of energy every day. Considering that each household consumes an average of 5 units per power per day, 11.50 megawatts of electricity can cater to 25,000 homes daily. Anakarshita, over to you now for Kolkata.
जी, और अब खबरें कोलकाता से। 31वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कल कोलकाता के धोनो धनियो ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली समेत कई हस्तियां भी उपस्थित रहे। ये महोत्सव 13 नवम्बर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल माध्यम से कल कोलकाता में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम में एक बार में 22,000 लोग एकत्रित हो सकते हैं। वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज पश्चिम बंगाल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा आज से एक महीने का कार्यक्रम शुरू करेगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी स्थित बंकिम भवन अनुसंधान केंद्र और संग्रहालय में शुक्रवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पैतृक घर नेहाटी में है। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। दिल्ली में आज हल्का कोहरा रहने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। और सामान्य तौर पर आज मुंबई में मौसम साफ रहेगा। वहीं कोलकाता में सामान्यतः मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है।
Chennai is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature was 25 degrees Celsius. Maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature was 19 degrees Celsius. Maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad again is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius. And Akarshita, we are moving to the other segment now, and of course, we are talking about history. And today is National Cancer Awareness Day. It is being observed today in India. It is an initiative that aims to raise awareness about the growing cancer burden in the country, inspire action towards prevention, early detection, and treatment. India is the first country in the world to officially recognize National Cancer Awareness Day. The date was chosen not only to honor the birth of Nobel laureate Madame Marie Curie, who discovered radioactivity and whose work has had a profound impact on cancer treatment, but also to reflect India's commitment to addressing cancer as a public health priority. Right, Akarshita? Let's move on to history now.
Jee. और आइए अब जानते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। आज के दिन ही 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कंतलपाड़ा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। और आज के दिन ही 1968 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। और 1996 में आज के दिन ही अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर का प्रक्षेपण किया। और आज के दिन ही 1998 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन धरती पर सुरक्षित लौटे।
And 1900, Dr. B.R. Ambedkar first started school on this day. Maharashtra officially declared it a Students' Day or Vidyarthi Divas to honor his commitment to education as a path to social progress and to encourage students across the state. And on this day, 1929, 7th November, that is, the Museum of Modern Art is open in New York City. It is considered one of the largest and most influential modern art museums globally and is home to a vast collection of around 200,000 artworks.
और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज चिदंबरम सुब्रमण्यम की पुण्यतिथि है। उन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। जब भारत को आजादी प्राप्त हुई उस समय देश में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। कई स्थानों पर अकाल पड़े। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में लोग भुखमरी के शिकार हुए और काल का ग्रास बन गए। जब सी सुब्रमण्यम को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया तब उन्होंने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की। उनकी बेहतर कृषि नीतियों के कारण ही 1972 में देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। सी सुब्रमण्यम की नीतियों और कुशल प्रयासों से ही आज देश खाद्यान्न उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है।
And Akashita, we just talked about Cancer Day, right? So today is 1867, remembering Marie Curie, famous for her work on radioactivity and two-time winner of Nobel Prize, the only woman to win the award in two different fields, that's physics and chemistry. At Sorbonne University, Paris, this remarkable lady took over the work of her equally famous husband, Pierre Curie, after his early death as professor of general physics in the Faculty of Sciences, the first time a woman has had this position. And also Akashita, renowned physicist whose work was influential in the growth of science in India, Sir C.V. Raman was born this day in 1888 in Trichinopoly, Tamil Nadu. And of course, he was the recipient of the Nobel Prize for Physics in 1930 for the discovery that when light traverses a transparent material, some of the light that is deflected changes in wavelength. And this phenomenon is now called Raman scattering and is the result of the Raman effect.
जी हाँ, रामन ने स्वाधीन भारत में विज्ञान के अध्ययन और शोध को जो प्रोत्साहन दिया उसका अनुमान कर पाना कठिन है। और आज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, संगीतकार, भक्ति संगीत तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान जितेंद्र अभिषेकी की पुण्यतिथि है। उन्हें 1960 के दशक के मराठी थिएटर के संगीत के उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है। जितेंद्र अभिषेकी ने ख्याल गायन की एक विशिष्ट शैली विकसित की जिसे आज अभिषेकी घराने के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं उनका ये शास्त्रीय गायन।
After Abhisheki, Canadian musician Leonard Cohen, a hugely influential singer-songwriter known for deep, reflective, often melancholic work, passed away this day in 2016 at age 82. Beginning his career as a poet and novelist, he eventually ventured into music when he was in his 30s. He also learned guitar and had an affinity for folk music.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long.
आज समाज सेविका तारा चोरियन की पुण्यतिथि है। वे मद्रास की पहली महिला थी जो मेयर बनी। मेयर के रूप में उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति में सरलता का समावेश कराया तथा उनके स्वास्थ्य के लिए दोपहर में पोषक तत्वों से पूर्ण स्वल्पाहार की व्यवस्था कराई, जिसके फलस्वरूप बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। स्वास्थ्य में सुधार होने से बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ने लगी, जिसको देखकर प्रायः सभी नागरिक अपने बच्चों को पाठशाला भेजने के लिए तैयार होने लगे। तारा चेरियन के सेवा भाव को देखकर ही भारत सरकार ने उन्हें 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया।
And we just talked about Canadian musician Leonard Cohen. Now, another fellow Canadian folk singer-songwriter, Roberta Joan Anderson, better known as Joni Mitchell, celebrates her birthday today. Joni turned pop music into an art form and is often compared to Bob Dylan. Born in 1943 this day, Joni taught herself to play the guitar, dulcimer and the piano, and quickly emerged as one of the leading folk performers of the late 60s and the 70s. Of course, one of the first women in folk music to achieve enviable longevity and critical recognition.
With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot.
आज फिल्मी दुनिया में अपनी अलग ही अदाकारी के लिए मशहूर दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता कमल हासन का जन्मदिन है। 1972 में कमल हासन की मुलाकात दक्षिण भारत के जाने माने निर्माता निर्देशक के बालचंद्रन से हुई, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचान कर अपनी फिल्म अरंगे तरंग में काम करने का अवसर दिया। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म अपूर्वा रंगनागल में मुख्य अभिनेता के रूप में निभाए गए किरदार से कमल हासन को पहचान मिली। 1977 में प्रदर्शित फिल्म 16 भया निथा नीले की व्यावसायिक सफलता के बाद कमल हासन स्टार कलाकार बन गए। 1981 वो दौर था जब कमल हासन की पहली हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए सुपरहिट हो गई। 1982 कमल हासन की एक और सुपरहिट तमिल फिल्म मुंदरम पिराई रिलीज हुई, जिसके लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख फिल्में रही पुष्पक, चाची 420, हेराम, दशावतारम, सदमा, सागर, गिरफ्तार, अपुराजा, इंडियन आदि। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के ये गीत। उन्हें पद्मश्री, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 13 दक्षिण भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड, 2 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 नंदी अवार्ड, 9 तमिलनाडु स्टेट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया।
And friends, one of the world's most successful music artists in electronica, Pierre David Guetta, French DJ, composer, producer, celebrates his birthday today. Guetta's brand of dance pop has made him a sellout artist, having sold over 9 million albums, 30 million singles worldwide. He has been nominated for countless awards and is a Grammy, AMA, BMA and DJ award winner, among others. A sample of his electronica, here goes.
आज प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार चंद्रकांत देवताली की जयंती है। वे देश की 24 भाषाओं में विशेष साहित्यिक योगदान के लिए प्रख्यात साहित्यकारों में शामिल थे। उन्हें 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है आदि। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, नमस्कार।